हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 17 18 एंड 19। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं पीतं तं सजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गारङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरम् श्रीवासुदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। चैप्टर 8 भगवत प्राप्ति, श्लोक नंबर 17, 18 एंड 19। भगवान अत्यंत ही सुंदर रीति से अपनी इस भौतिक प्रकृति यानी इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना करेंगे। श्लोक नंबर 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 में। पहले तीन श्लोकों में 17, 18 और 19 में भगवान इस भौतिक जगत के विषय में बताएंगे और 20, 21 और 22 में आध्यात्मिक जगत के विषय में, फिर इन दोनों को भगवान तुलना कर, क्योंकि भगवान कह रहे हैं पहले भगवान ने क्या कहा श्लोक नंबर 15 में, माम अप्रेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम, के मुझे प्राप्त होने के बाद दोबारा इस दुखालय जगत में वापिस नहीं आना पड़ता, क्योंकि ये परम सिद्धि है, जो महात्मा है वो परम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं इसलिए उनको वापस नहीं आना पड़ता है। लेकिन यदि मेरे पास नहीं आए तो चाहे किधर भी जाएंगे, आ ब्रह्म भुवना लोकन पुनर्आवृति नोर्जुन माम उपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म नवित्य, चाहे ब्रह्म लोक में भी चले जाएंगे तो भी वापस आना पड़ेगा, लेकिन मेरे लोक में नहीं आए आ गए तो फिर वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो फिर ऐसा मन में आता है कि क्या डिफरेंस है भगवान के लोक में चले जाए या भौतिक लोक में, क्या फर्क पड़ता है? तो भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए अब 6 श्लोक कहेंगे, जिसमें से हम 3 अभी पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 17, 18 और 19। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंत अहयत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतां तेहो रात्र विदो जना सहस्र युग पर्यंतं अहयत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतां तेहो रात्र विदोजना सहस्र युग पर्यंत अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतां तेहो रात्र विदोजना सहस्र युग पर्यंतम। ये पर रुकेंगे और उसके बाद उसका जो अ बचेगा वो हा को देंगे, ठीक है? सहस्र युग पर्यंतम अहयत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतम् तेहो रात्र विदोजना। शब्दार्थ सहस्त्र मतलब 1000, युग युग पर्यंत। भगवान कहते हैं जब 1000 युग चले जाते हैं, अब 1000 युग कितने होते हैं, मतलब एक ब्रह्मा जी के दिन में, एक दिन में 1000 युग होते हैं, एक युग सत्ययुग कलयुग और त्रेता द्वापर, ये सब मिलके 1000 युग जब हो जाते, ये सब 1000 बार जब गुजरते हैं फिर क्या होता है, ब्रह्म सहस्त्र युग पर्यंतम, यानी कि जब 1000 युग होते हैं तो अहर्यत् ब्रह्मणो विदु, अहर्यत् मतलब ब्रह्मा जी का अहर यानी एक, ये एक दिन, यत् तो फिर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, वे जानते हैं यानी कि जो बुद्धिमान होते हैं, मानवीय गणना जो हमारी होती है उसमें हम देखते हैं कि जब 1000 युग बीत जाते हैं, 1000 युग बना 1000 बार जब सारे युग बीत जाते हैं तो क्या होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और रात्रिम युग सहस्त्राणाम, रात्रि मना रात्रि, युग मना युग, सहस्त्राणाम उसी प्रकार से 1000 बार समाप्त होने वाली अहर्यत् अहर रात्रि मना दिन रात वेदो जना, यानी कि जो लोग जानते हैं। अनुवाद देखिए, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि भी होती है। अब क्योंकि भगवान इससे पहले श्लोक नंबर 16 में ब्रह्मा जी के विषय में बताया ना कि जो ब्रह्मा लोक में भी चले जाते हैं वो भी पुनरावृत्ति अर्जुन, तो अब ब्रह्मा जी का लोक कितना उसके अंदर आयु कितनी बड़ी होती है उसके विषय में भगवान बता रहे हैं। और शिला प्रभुपाद जी बहुत ही डिटेल से इस बात को समझाएंगे। तात्पर्य শ্রীল প্রভুপাদ দ্বারা। শ্রীল প্রভুপাদ কি জয় হো। শ্রীল প্রভুপাদ জি কেতে ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড কি অবধি সীমিত হ্যাঁ, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होते हैं। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग सत्य त्रेता द्वापर तथा कलि के 1000 चक्र होते हैं, यानी कि एक दिन में चार बार चतुर्युग जो है सत्युग त्रेता द्वापर और कलि ये सब 1000 चतुर्युग आएगा, मतलब 1000 बार सत्युग आएगा, 1000 बार त्रेता युग आएगा, 1000 बार द्वापर युग आएगा, 1000 बार कलयुग आएगा। यानी कि यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं 1000 चक्र होते हैं, ठीक है, 1000 चक्र लगाता है तब क्या होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब आगे बताते हैं सत्युग के बारे में श्री प्रभुपाद जी, सत्युग में सदाचार ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। सत्युग में बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, धर्म होता है, तो इसलिए उस युग वो युग भी बहुत बड़ा होता है। और सत्युग की आयु यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यह युग 17,28,000 17,28,000 वर्षों तक चलता है। कौन सा युग, सत्युग जो है वो 17,28,000 साल का होता है। उसके बाद कौन सा युग आता है, त्रेता युग। अब त्रेता युग में पापों का आरंभ होता है और यह युग, अब क्योंकि जैसे जैसे युग बदलता है तो व्यक्ति की मनोवृत्ति भी बदलने लगती है, फिर त्रेता युग में जीव के हृदय में पाप उत्पन्न होने लगते हैं, तो उस युग की आयु 12,96,000 साल तक, 12,96,000 तक होती है। किसकी आयु, त्रेता युग की। उसके बाद द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। अब जैसे द्वापर आता है तो और भी ज्यादा सदाचार और धर्म समाप्त हो जाते हैं, पाप बढ़ जाते हैं, तो यह युग 8,64,000 ईयर्स तक चलता है। और सबसे अंत में कौन सा युग आता है जिसमें हम सब यहाँ पर हैं, वो कौन सा है जिसे हम विगत 5000 सालों से भोग रहे हैं, वो है कलयुग। और वो आता है जिसमें कलह अज्ञान अधर्म तथा पाप का प्राधान्य होता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। हर कोई एक दूसरे से लड़ना चाहता है, कलह युग। इस कलयुग को कहा ही जाता है कलह, झगड़ा लो। आप किसी को सीधी बात भी कहोगे ना, वो भी आप इवन उसके भले की बात होगी ना तो वो भी आपसे लड़ाई करना शुरू हो जाएगा। ये युग ऐसा है, ये युग अपना प्रभाव दिखा रहा है और हर कोई एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहा है, हर कोई अधर्म करना चाहता है, अपराध करना चाहता है, अत्याचार, एक दूसरे को दुखी देख के जीव संतुष्ट होते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है और इस कलयुग को प्रभुपाद जी बोलते हैं हम 5000 साल से भोग रहे हैं और जब तक अब जिएंगे इस कलयुग को ही भुगतना पड़ेगा। इस कलयुग में बहुत सारे अपराध हैं, ऐसा भागवत कहता है कि कलयुग के अंदर परीक्षित महाराज ने क्या किया था, जब कलयुग आए थे तो उन्होंने बोला था कि मैं आपको अपने अपने इस राज्य में रहने नहीं दूंगा। कलयुग ने कहा राजा मैं भी तो आपकी प्रजा हूँ, तो अब मेरा युग आया तो मुझे कहीं तो स्थान दीजिए। तब कलयुग को महाराजा परीक्षित ने बोला मेरा दिल करता है मैं तुम्हें मार डालूं, लेकिन क्योंकि तुम्हारा युग है तो फिर मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तो किसी ने प्रश्न किया अगर मार देता तो कितना अच्छा होता, कलयुग मर जाता उस समय और आता ही नहीं, अपराध होते ही नहीं। तो उसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते नहीं नहीं, कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग के अंदर भले ही कितने सारे अवगुण हैं, कितने सारे दोष हैं, परंतु इसके अंदर एक ऐसा गुण है जो इसके समस्त अवगुणों पर भारी है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कलय दोषे निधे राजन यस्त एको महान गुण। कलयुग तो दोषों का समुद्र है, हर किसी के मन में अपराध है, ईर्ष्या है, अज्ञान है, अधर्म है, पाप है, भले ही इसके अंदर करोड़ों करोड़ दोष है, परंतु कले दोषे निधेरादम ह्यस्ति एको महान गुण, इसके अंदर एक बहुत बड़ा महान गुण भी है और वो क्या है, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगो परम रचित। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो फिर मुक्त संगो इस कलयुग के समस्त दोषों से मुक्त हो जाओगे। और एकमात्र यही तरीका है कि हम भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेकर इस कलयुग से पार हो जाए। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह कलयुग इसके अंदर कला अज्ञान अधर्म तथा पाप का प्राधान्य है और सदाचार प्रहर लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्ष तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया नित्य निरंतर चलती रहती है। अखिला प्रभुपाद जी देखिए यहाँ पर एक खास बात बता रहे हैं, इसको हमें समझना है कि ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र करके कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं, इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ये है हमारे आज के श्लोक का अनुवाद के सहस्त्र युग पर्यंत अहर्यत ब्रह्मणो विदु। 1,000 जब चतुर्युग होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते हो रात्र विदोजना, और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्रह्मा जी ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। अब एक वर्ष में क्या होता है, एक दिन में 1,000 बार चतुर्युग होता है, ऐसे 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी जीते हैं। और ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत ही विचित्र तथा ना समाप्त होने वाली लगती है। ऐसा लगता है इतने वर्षों तक तो ऐसा लगता है समाप्त होगी नहीं, इतनी वर्ष एक दिन में 1,000 बार चतुर्युग आएगा, तो ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि विचित्र है। लेकिन शीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर यहाँ पर व्याख्या करते हैं इस बात की, कहते हैं किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारण में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लूप हो जाते हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा भले हमें लगता है परंतु ऐसा है नहीं। कारण समुद्र जिसमें कारण दक्षाय विष्णु शयन करते हैं, वहां पर तो ऐसे असंख्य ब्रह्मा जी आते हैं, पानी के बुलबुलों की तरह प्रकट होते हैं और लूप हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु जब समाप्त तो होती है, कितनी आयु है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष जब बीतते हैं तो कारण दक्षाय विष्णु एक बार श्वास लेते हैं और वो पूरा ब्रह्मांड उनकी श्वास के साथ अंदर चला जाता है, और फिर जब वो दूसरी सांस निकालते हैं तो दूसरा ब्रह्मांड निकलता है। तो ये केवल इसलिए भगवान के ब्रह्मा जी बताते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, यस्यैक निश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विश्वो महंस इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। यस यैक निश्वसित कालमत, यानी कि जो एक सांस लेते हैं और उससे क्या होता है, सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चलते हैं। महाविष्णु की रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांडों के अन्य सारे स्वामी उनके एक श्वास जितने काल तक ही जीवित रहते हैं। और वेश्वर महान सह यस्य कला विशेषो। ब्रह्मा जो कि जिनकी इतनी बड़ी आयु है, महाविष्णु के एक सांस से क्या होता है, उनकी आयु खत्म हो जाती है। वो एक बार सांस लेते हैं, उनकी आयु समाप्त हो जाती है। और यह महाविष्णु क्या है, वो ब्रह्मा जी उसके विषय में बता रहे हैं। विष्णु महान सह यस्य कला विशेषो, ये महाविष्णु भी भगवान श्री कृष्ण का एक अंश ही है। तो इसलिए यदि पूजन्य कोई है तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाम, केवल कृष्ण है, इसे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं ही इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांडों के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। अब ब्रह्मा हो या ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि, तो ये क्या है, भौतिक ब्रह्मांड का अंग है। और इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो क्या है, परिवर्तनशील। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में यही डिफरेंस है कि भौतिक जगत में कुछ स्थायी नहीं है, कुछ सुखमय नहीं है, और आध्यात्मिक जगत में कुछ अस्थायी नहीं है, कुछ दुख नहीं है। वहां पर हर एक वस्तु में सुख है, आनंद है। उसके विषय में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम भौतिक जगत के विषय में पढ़ रहे हैं। ये परिवर्तनशील है, हर क्षण परिवर्तन आता है। सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान ये सब इस भौतिक जगत में होता है, आध्यात्मिक जगत में केवल आनंद ही आनंद है। वहां पर मिलन में आनंद है तो जुदाई में भी आनंद है। वहां पर रोना नहीं, वहां पर दुख नहीं है, वहां पर केवल और केवल आनंद मिलता है। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग तथा मरण की क्रिया से अच्युत नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं, फलस्वरूप उन्हें तुरंत ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी के बारे में बताएं। किसी के मन में यह आता है ना कि भगवान ने पहले कहा कि आ ब्रह्म भुवनाल लोकान पुनरावृत्ति, में जो ब्रह्म लोक में चले जाते हैं वो वापिस जन्म लेते हैं, तो मन में आता है ना कि ब्रह्मा जी वापिस भौतिक जगत में आते हैं या फिर डायरेक्ट से भगवान के पास। तो श्री प्रभुपाद जी कहते, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान की डायरेक्ट से सेवा कर रहे हैं। ये जो ब्रह्मा जी सृजन कर रहे हैं वो भगवान का कार्य कर रहे हैं, और जो भगवान की सेवा कर रहा है तो क्या होता है उससे। श्री प्रभुपाद जी बताएं, चूंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वह भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं, फलस्वरूप वे तुरंत ही मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं और डायरेक्ट से भगवान के पास चले जाते हैं। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेज दिया जाता है। अब उनको क्यों ब्रह्मलोक भेज दिया जाता है सिद्ध सन्यासियों, क्योंकि भगवान ने कहा अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। देखो, मेरे पास आने की एक शर्त है, तुम्हें मेरा स्मरण करना होगा। तो जो बहुत बड़े बड़े वो ज्ञानी होते हैं और ये होते हैं ना सन्यासी वगैरह होते हैं, सिद्ध सन्यासी योग सिद्धियां, जो वो भगवान का स्मरण नहीं करते, भगवान से प्रेम नहीं करते, इसलिए उनको क्या कर दिया जाता है ब्रह्मलोक में, क्योंकि वो ब्रह्म का चिंतन करते हैं, भगवान का तो चिंतन नहीं करते, तो उनको ब्रह्मलोक में भेज दिया जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्थाई है, तो वो स्थाई नहीं है बल्कि वो जो है ना समाप्त हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। तो आगे भगवान श्री कृष्ण उसी के विषय में आगे चर्चा कर रहे हैं कि सारे संसार में जितने भी जीव हैं, वो जब अंत होता है मतलब प्रलय होती है, तो कब होती है और कैसे होती है उसके विषय में बता रहे श्री भगवान श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं अव्यक्तात् व्यक्त यह सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्या हरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। शब्दात् अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्व। अव्यक्तात् मतलब अव्यक्त से, दिखते नहीं है। फिर व्यक्त है, जितने भी जीव हैं वो सर्वा सारे। प्रभवंती, प्रभवंती में प्रकट होते हैं। प्रभवंती हरागमे, हरागमे माना दिन में। पहले दिखते नहीं है, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो क्या होता है, सारे जीव जो है वो प्रकट हो जाते हैं। और रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, जब रात्रि आती है, रात्र्यागमे जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो प्रलीयन्ते विनष्ट हो जाते हैं तत्र उसमें। एव निश्चय ही अव्यक्त अप्रकट संज्ञ के नामा कहे जाते हैं, यानी कि जब रात्रि होती है तो निश्चय ही सारे जीव प्रलीयन्ति विनष्ट हो जाते हैं, और दिन होता है तो सारे प्रकट होते हैं। यानी कि ये आवागमन का चक्कर समाप्त नहीं होता जब तक कि हम इस भौतिक जगत में होते हैं। जब भौतिक जगत में क्या होगा, ब्रह्मा जी का दिन होगा, सारे जीव जो हैं वो कहीं पर भी होंगे, भले कहाँ पर होते हैं, हाँ जब प्रलय हो जाती है तो सारे जीव कारण दक्षिण विष्णु के अंदर समा जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी का दिन होता है तो पहले जो हमारे संचित कर्म होते ना उनके अनुसार हमको दूसरा जन्म मिलता है, और फिर हमें वापस भौतिक जगत में आकर ऐसा कार्य करना पड़ता है। जो भी कार्य हम करते हैं, फिर सत्वगुण में रहकर कार्य करेंगे तो ऊपर के लोकों में जाएंगे, रजोगुण में रहकर कार्य करेंगे तो बारम्बार इस संसार में जन्म लेंगे, और तमोगुण में रहकर कार्य करेंगे तो नरकों में जाएंगे। इस तरह ऊपर नीचे आगे पीछे का चक्कर चलता रहेगा। कब तक, जब तक कि भगवान को प्राप्त नहीं करते। फिर वापस जब ब्रह्मा जी की रात्रि आएगी, वापस से कारण दक्षिण विष्णु के अंदर में सब सुप्त हालत में चले जाएंगे। फिर वापस दिन आएगा तो उपन मतलब सारे व्यक्त दिखाई देंगे, सब संसार में आएंगे और वापस से कार्य करेंगे। अनुवाद देखिए, ब्रह्मा के दिन की शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 19 में बहुत ही ज्यादा क्लियर करके बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, भूत ग्रामः स एवायम् भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। भूत ग्रामः स एवायम् भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। भूत ग्रामः स एवायम् भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। शब्दात् भूत ग्रामः स एवायम्। भूत ग्राम मतलब समस्त जीवों का समूह, जितने भी जीव हैं स वही एव अयम। निश्चय ही अयम मना यह भूत्वा जितने भी जीव हैं वही हैं, यानी कि दूसरे नहीं, जितने भी जीव हैं उन्हीं का क्या होता है, भूत्वा प्रलीयते वापिस जन्म लेते हैं, वापिस मरते हैं वापिस वही आते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम आज मरे हो तो तुम्हें आज नई आत्मा मिली है, एकदम नया तुम्हारा आज से क्रेडिट ऑन होने वाला नहीं, ये पहले से ही चलता आ रहा चक्कर है। तो भूत ग्राम स एवायम वही वाले जीव जो होते हैं वो भूतवा प्रलीयते बारम्बार दोबारा इस संसार में जन्म लेते हैं और प्रलीयते विनष्ट हो जाते हैं। रात्र्यागमे वशः पार्थ, जब रात्रि होती है तो आगमे, जब रात्रि आती है आगमे यानी आने पर, अवशः स्वतः पार्थ हे प्रताप पत्थपुत्र प्रभवंत्य प्रकट होते हैं
अह दिन में आगमन, यानी प्रलियते कब होती है, जब रात होती है। जैसे यहाँ पर क्या बोला, भूत ग्राम एवायम, वही सारे भूत प्राणी भूतवा भूतवा जन्म लेते हैं और प्रलियते। प्रलियते कब, रात्रि आगमन, जब रात्रि होती है तो मर जाते हैं या फिर विनष्ट हो जाते हैं। और प्रभवंत्य हर आगमन, दिन होता है तो वापिस से प्रकट हो जाते हैं। अनुवाद देखिए, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहाय वत विलीन हो जाते। उन पर जन्म मृत्यु पर किसी का जोर नहीं चलता, कोई ये नहीं सोच सकता कि चलो अभी ब्रह्मा जी की रात आ गई तो भी मैं नहीं मर रहा हूँ, प्रलय आ गई तो भी मैं नहीं मर रहा हूँ, या कोई ये सोचे भाई मुझे पैदा नहीं होना है, मैं पैदा नहीं होना चाहता हूँ, मैं यहीं पर कारण रक्षा है विष्णु के अंदर ही समर। नहीं, अवश्य यहाँ पर बोलना रात्रियागमे वशः, वो विवश हो जाते हैं, उनको ये प्रोसेस करना पड़ता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आप जीव तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि वो भगवान के धाम में नहीं चला जाता। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय हो। शीला प्रभुपाद कहते अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस दयालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोक में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया कि वो सब अज्ञानी है जो यहाँ ये सारा कार्य कर रहे हैं ना, पुनर्जन्म और मृत्यु का। अल्पज्ञानी जीव होते हैं जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, वो कार्य ही इसलिए करते हैं। क्या कार्य करते हैं कि मैं कैसे इस भौतिक ब्रह्मांड में रहकर आनंद प्राप्त करूं। तो वो क्योंकि केवल उनके जीवन का उद्देश्य यही है कि वो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। वो अगर बहुत शुभ कार्य करेंगे तो ऊंचे लोकों में जाएंगे, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होगा। वापिस से समय समाप्त हो जाएगा तो इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम इच्छन्ति, तो वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे जैसे कार्य किए होंगे, जैसे ही ब्रह्मा जी का दिन उत्पन्न होता है तो जिसने कुत्ते के जैसे कार्य किए होंगे उसे कुत्ते का जन्म मिलेगा, जिसने गधे के जैसे कार्य किए होंगे उसे गधे का जैसे जन्म मिलेगा, और जिसने देवता के जैसे कार्य करेंगे उसको देवता। मना कोई नई आत्मा नहीं है, ये सारा प्रोसेस चल रहा है। अभी जो जीव मुक्त हो जाते हैं वो चले जाते हैं, मतलब वो कम हो जाता है, ज्यादा कोई नहीं होगा इस संसार में, वही होंगे, रिपीट होते रहेंगे। भूतवा भूतवा परिवर्तन, मतलब वही रिपीट होते हैं बारंबार, वही आते जाते। कब तक, क्योंकि भगवान ने जो बताया 15 में 8.6 पुनर्जन्म दुखाय अशाश्वतम नाप्नुवन्ति, जिसने सिद्धि प्राप्त कर लिया, जिसने कृष्ण को प्राप्त कर लिया वो वापिस नहीं आता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं, वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। दिन में क्या होता है, उनको उनके कार्यों के अनुसार शरीर मिलता है, और रात्रि में क्या होता है, उनका शरीर जो है वो महाविष्णु के अंदर विलीन हो जाता है, और फिर वापिस दिन होता है तो वो प्रकट होते हैं। भूतवा भूतरा प्रलियते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। और अंत तो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त हो जाता है तो उन सबका साहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। एक महाप्रलय होता है, एक तो प्रलय होता है चार युग के बाद, ठीक है, और ब्रह्मा का दिन समाप्त कब होता है, जब एक चार युग चतुर्युग 1000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, फिर रात्रि आती है तो सारे महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं, फिर 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों के बाद जब महाप्रलय आता है ना, जब ब्रह्मा जी के 100 साल समाप्त होते हैं, फिर महाप्रलय में क्या होता है, वो सारे के सारे विलीन हो जाते हैं, उनका संहार हो जाता है, वापस से महाविष्णु के शरीर में वो करोड़ों वर्षों तक रहते हैं, समाप्त उनका तभी तभी तक उनकी मुक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन फिर क्या होता है, समझो जैसे आप रात को सोए हो, भले 8 घंटे सोए हो या 20 घंटे सोए हो, आप सुबह उठोगे तो आप वही उसी से प्रोसेस करोगे ना, जो आपने पहले मना जब आप ऑफिस में जाओगे तो वही फाइल जो कल काम रह गया होगा उसके हिसाब से। तो इसी तरह से जब करोड़ों वर्ष के बाद भी जीव सुप्त अवस्था में जागता है तो वही अपने पिछले स्वभाव के अनुसार कार्य करना करने लगता है। जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। फिर जब दूसरा कल्प स्टार्ट होता है, ब्रह्मा जी वापस से कारण दक्षाय विष्णु के क्षीर दक्षाय विष्णु के नाभि से जब उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है, वो सारे जीव भी वापस से प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, बार बार जन्म बार बार मरण। किंतु अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि बस भले ज्यादा टाइम तक उनको संसार में आना पड़ता है या थोड़े टाइम के बाद, अव्यक्त हालत और व्यक्त हालत आना और जाना तो लगा ही रहता है ना। ये अगर आप बहुत समय के बाद भी कहीं पर आपको वही कष्ट मिलने वाले हैं, बहुत भले आप अच्छी जगह पे जाओ, अमेरिका में जाओ, आप वहां पर 1 साल रह के आओ, लेकिन वही उसके बाद वापस अगर आपको किसी ऐसे सिटी में जाना है, ऐसे कंट्री में जहां पर बहुत ज्यादा ना करप्शन है, दुख है और ये भ्रष्टाचार है, तो भले क्या होगा, आप भले वहां पर कितना आनंद करके आओ, वापस से वही दुख में तो आपको आना ही है ना। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि भौतिक जगत में वापस वापस आना रहेगा। और शीला प्रभुपाद जी अब उसका उपाय बता रहे हैं। शीला प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना में स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने की तथा हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। एकमात्र यही उपाय है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं बुद्धिमान, अब देखो शुरू में इस तात्पर्य के स्टार्ट में श्री प्रभुपाद ने बोला अल्पज्ञ। अल्पज्ञ कौन, जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि आप पैदा हुए हैं तो यहाँ पर आनंद प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, पूरा जीवन स्ट्रगल करता है मनुष्य। क्या करना, आनंद प्राप्त करना, खुद को भी और अपने को, अपने जिनको अभी इस जन्म में अपने मिले हैं, भले ही पिछले जन्म में वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते होंगे, लेकिन अब तो मेरा बच्चा है उसके लिए जीना है, मेरी पत्नी है उसके लिए जीना है, मेरी ये सब मेरे रिश्तेदार है, मेरे रिलेटिव है, उनके लिए कमाना है, उनको सुखी करना है, तो उनके लिए जीते 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 एक दिन मर जाता है। क्यों, क्योंकि वो अल्प ज्ञानी होता है। और ज्ञानी क्या करता है, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, किंतु जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य जन्म स्पेशली बनाया गया है भगवान की भक्ति करने के लिए। शास्त्र कहता है, नाहम देहो देह बाजाम निर्लोके अष्टान कामान अहर्ते विट भोजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत। यहाँ पर ऋषभ देव अपने पुत्रों को, 100 पुत्रों को बताते हैं कि बेटा ये जो मनुष्य देह, ये जो निरी देह आपको मिला है, वो ये यहाँ पर आकर विट बुजाम सुअरों और कुत्तों की तरह अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि बस आहार निद्रा वही मैथुन में अपने जीवन को समाप्त करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि ये जो मनुष्य देह है वो स्पेशल कार्य के लिए मिला है। क्या, ये तपो दिव्यम, ये दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है, जिससे हम कृष्ण को प्राप्त करके इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सके। केवल एक ही तरीका है कि हम दिव्य तपस्या, और दिव्य तपस्या क्या है, भगवान का पवित्र नाम जो कि भगवान से अभिन्न है, उस पवित्र नाम और भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो शब्द हैं, उनका आश्रय जब हम लेते हैं तो ये दिव्य तपस्या है। तो यदि हम भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, तो फिर हम अपने जीवन को, अपने मनुष्य देह को सफल कर सकते हैं, अन्यथा हम कभी भी जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकते। इसलिए श्री प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं यहाँ पर कि किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना में स्वीकार करते हैं वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में लगाते हैं तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उसके लिए पुनर्जन्म वगैरह नहीं है, फिर वो कृष्ण को प्राप्त होते हैं और यहाँ पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।